नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, आर फॉर डेटा साइंस, एक व्यावहारिक आरंभिक स्तर की तकनीकी पुस्तक है जो आर प्रोग्रामिंग भाषा के माध्यम से डेटा को उपयोगी समझ में बदलने की प्रक्रिया सिखाती है। इसका केंद्र केवल कोड लिखना नहीं बल्कि डेटा विज्ञान के पूरे कार्य प्रवाह को समझना है। पुस्तक बताती है कि किसी विश्लेषण की शुरुआत डेटा आयात करने से होती है, फिर उसे सुव्यवस्थित किया जाता है, बदला जाता है, चित्रों के माध्यम से खोजा जाता है, मॉडल से सार निकाला जाता है और अंत में निष्कर्ष स्पष्ट रूप से साझा किए जाते हैं। इसका प्रमुख परिवेश टाइडिवर्स है, यानी आपस में सुसंगत आर पैकेजों का समूह। पुस्तक विशेष रूप से उन पाठकों के लिए बनाई गई है जिनके पास प्रोग्रामिंग का पूर्व अनुभव नहीं है, फिर भी यह कामकाजी विश्लेषकों के लिए उपयोगी अनुशासन देती है। अभ्यासों, उदाहरणों और क्रमबद्ध व्याख्या के सहारे यह कच्चे असंगत डेटा से प्रश्न पूछने योग्य डेटा तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। सांख्यिकीय सिद्धांत की गहरी पाठ्य पुस्तक होने के बजाय इसका उद्देश्य विश्लेषण करने की ठोस और दोहराई जा सकने वाली आदत विकसित करना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, डेटा विज्ञान को एक जुड़े हुए पुनरावृत कार्य प्रवाह के रूप में देखना। पुस्तक की सबसे उपयोगी विशेषता यह है कि वह डेटा विज्ञान को अलग अलग तकनीकों की सूची नहीं मानती। वह आयात, व्यवस्थितकरण, रूपांतरण, दृश्यांकन, मॉडलिंग और संप्रेषण को एक परस्पर जुड़ी प्रक्रिया के रूप में रखती है। वास्तविक काम में विश्लेषक पहले डेटा को देखकर प्रश्न बनाता है, फिर रूपांतरण करता है, नया चित्र बनाता है और पहले के अनुमान को संशोधित करता है। इसलिए कार्य प्रवाह सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता बल्कि खोज और सुधार के चक्रों में चलता है। यह दृष्टि नए पाठक को यह समझने में मदद करती है कि किसी एक फंक्शन को याद कर लेना पर्याप्त नहीं है, हर चरण का उद्देश्य अगले चरण को अधिक विश्वसनीय बनाना है। उदाहरण के लिए, गलत प्रकार से आयात की गई तारीख या संख्या बाद के ग्राफ और मॉडल दोनों को भ्रामक बना सकती है। इसी तरह दृश्यांकन केवल अंतिम प्रस्तुति नहीं, प्रारंभिक जांच का उपकरण भी है। पुस्तक इस क्रम के माध्यम से तकनीकी चुनावों को विश्लेषणात्मक प्रश्नों से जोड़ती है। परिणाम स्वरूप पाठक डेटा पर आदेश चलाने के बजाय समस्या, प्रमाण और निष्कर्ष के संबंध को समझना शुरू करता है। यही ढांचा छोटे व्यक्तिगत विश्लेषणों से लेकर साझा टीम परियोजनाओं तक लागू होता है। दूसरा, टाइडी डेटा का नियम। हर चर एक स्तंभ और हर अवलोकन एक पंक्ति, टाइडी डेटा पुस्तक का केंद्रीय संगठनात्मक विचार है। इसके अनुसार हर चर को एक स्तंभ में, हर अवलोकन को एक पंक्ति में और हर अलग प्रकार की अवलोकन इकाई को अलग तालिका में रखना चाहिए। यह नियम देखने में साधारण है पर इसका व्यावहारिक प्रभाव बड़ा है। वास्तविक स्प्रेडशीटों में शीर्षक कई पंक्तियों में फैले हो सकते हैं, एक ही स्तंभ में कई मान भरे हो सकते हैं या महीनों को अलग अलग स्तंभों में रखा जा सकता है। ऐसी संरचनाएं मनुष्य को पढ़ने में सुविधाजनक लग सकती हैं लेकिन विश्लेषण और चित्रांकन के लिए बाधा बनती है। टाइडी रूप में आने पर एक जैसी क्रियाएं अनेक डेटा सेटों पर लागू की जा सकती है। पुस्तक टाइडर के माध्यम से चौड़े डेटा को लंबे रूप में और जरूरत पड़ने पर लंबे रूप को चौड़े रूप में बदलने की अवधारणा समझाती है। यह केवल सफाई का चरण नहीं है, सही संरचना प्रश्नों को स्पष्ट करती है, समूहों की तुलना आसान बनाती है और मॉडलिंग के लिए उपयुक्त इनपुट तैयार करती है। साथ ही यह नियम डेटा की अर्थपूर्ण इकाइयों पर सोचने को बाध्य करता है। पाठक को तय करना पड़ता है कि वास्तव में चर क्या है, एक अवलोकन क्या है और कौन सी तालिकाएं अलग रहनी चाहिए। तीसरा, रूपांतरण के जरिए डेटा को प्रश्नों के अनुकूल बनाना। डेटा आयात हो जाने के बाद उसकी उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि विश्लेषक उसे प्रश्न के अनुरूप कैसे रूपांतरित करता है। पुस्तक डिप्लायर आधारित कार्यशैली से पंक्तियों को छांटने, स्तंभ चुनने, नए चर बनाने, क्रम बदलने, समूह बनाने और सारांश निकालने की बुनियादी क्रियाएं सिखाती है। इन क्रियाओं का महत्व केवल सुविधा में नहीं है, वे विश्लेषक को अस्पष्ट डेटा से मापने योग्य तुलना तक ले जाती हैं। मसलन, किसी पूरे डेटा सेट का औसत अक्सर सीमित जानकारी देता है, जबकि श्रेणी या समय के आधार पर समूहित सारांश असमानता, प्रवृत्ति या असामान्य मान दिखा सकते हैं। पुस्तक पाइप आधारित शैली को इसलिए महत्व देती है कि काम के चरण उसी क्रम में पढ़े जा सके जिसमें वे किए गए हैं। इससे कोड एक छिपी हुई प्रक्रिया नहीं रहता बल्कि तर्क का दस्तावेज बन जाता है। यह पारदर्शिता त्रुटि खोजने, काम दोहराने और सहकर्मियों को समझाने में सहायक है। पुस्तक चर के प्रकार, अनुपस्थित मान और पाठ, तारीख अथवा श्रेणी जैसे सामान्य डेटा रूपों से निपटने की आवश्यकता भी रेखांकित करती है। रूपांतरण का लक्ष्य डेटा को मनमाने ढंग से बदलना नहीं बल्कि उसके अर्थ को सुरक्षित रखते हुए विश्लेषण के लिए स्पष्ट बनाना है। चौथा, जीजी प्लॉट आधारित दृश्यांकन, खोज और संप्रेषण दोनों का माध्यम। पुस्तक में दृश्यांकन को सजावटी अंतिम चरण नहीं माना गया है। ग्राफ डेटा की संरचना देखने, संभावित संबंध पहचानने, असामान्य मान पकड़ने और नए प्रश्न बनाने का तेज माध्यम है। जीजी ब्रॉड की परतों पर आधारित पद्धति इस सोच को व्यवस्थित करती है। पहले डेटा और चर के दृश्य गुणों से संबंध तय किया जाता है, फिर बिंदु, रेखा, स्तंभ या अन्य ज्यामितीय रूप चुने जाते हैं और अंत में पैमाने, रंग तथा विभाजन के माध्यम से तुलना स्पष्ट की जाती है। इस ढांचे का लाभ यह है कि पाठक ग्राफ को अलग अलग आदेशों का परिणाम मानने के बजाय डेटा के बारे में एक तर्कपूर्ण डिजाइन निर्णय के रूप में देखता है। सही ग्राफ किसी औसत के पीछे छिपे फैलाव, समूहों के अंतर या समय के बदलाव को दिखा सकता है। लेकिन पुस्तक अप्रत्यक्ष रूप से यह भी सिखाती है कि चित्र को सावधानी से पढ़ना चाहिए। अक्षों की सीमा, रंग का चुनाव, समूहों का आकार और अनुपस्थित मान निष्कर्ष को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए दृश्यांकन अनुमान उत्पन्न करता है, अंतिम प्रमाण अपने आप नहीं देता। अच्छी दृश्य प्रस्तुति के लिए प्रश्न, दर्शक और डेटा प्रकार का मेल आवश्यक है। यही कारण है कि यह कौशल खोजपूर्ण विश्लेषण और रिपोर्टिंग दोनों में उपयोगी बनता है। अंत में मॉडल, पुनरुत्पाद्य रिपोर्टिंग और प्रोग्रामिंग से विश्लेषण को टिकाऊ बनाना। पुस्तक मॉडलिंग को डेटा के हर विवरण को दोहराने की कोशिश नहीं, बल्कि उसमें मौजूद प्रमुख संकेतों का सरल वर्णन बनाने की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती है। मॉडल किसी संबंध के बारे में स्पष्ट अनुमान को डेटा के सामने परखने का ढांचा देते हैं। फिर भी पुस्तक का बल जटिल सांख्यिकी सिद्धांत से अधिक मॉडलिंग कार्यप्रवाह पर है, जैसे प्रश्न तय करना, उपयुक्त रूपांतरण करना, मॉडल की जांच करना और बचे हुए पैटर्नों को देखना। यह सीमा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाठक को समझना चाहिए कि गहन अनुमानात्मक सांख्यिकी के लिए अतिरिक्त अध्ययन चाहिए होगा। इसके साथ ही पुस्तक दोहराए जाने वाले काम को फंक्शनों, पुनरावृत्ति और सुव्यवस्थित कोर से संभालने की दिशा दिखाती है। जब एक ही विश्लेषण कई समूहों, फाइलों या समय अवधियों पर लागू हो, तब हाथ से कॉपी करना त्रुटि बढ़ाता है। अंत में रिपोर्टिंग का पक्ष कोड, व्याख्या और परिणाम को एक ही दस्तावेज में जोड़ने पर जोर देता है। आधुनिक संस्करण में क्वार्टो जैसे उपकरण इस उद्देश्य से जुड़े हैं। ऐसा दस्तावेज केवल निष्कर्ष नहीं दिखाता, बल्कि उसके बनने की प्रक्रिया भी सुरक्षित रखता है। यही पुनरुत्पादकता विश्लेषण को व्यक्तिगत प्रयोग से साझा, जांचे जा सकने वाले कार्य में बदलती है। निष्कर्ष में आर फॉर डेटा साइंस उन विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, व्यावसायिक विश्लेषकों और स्वाध्यायी पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, जो आर के साथ वास्तविक डेटा पर काम शुरू करना चाहते हैं। जिन लोगों ने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की है, उन्हें इसमें कार्यों का क्रम, अभ्यास और टाइडीवर्स की अपेक्षाकृत पठनीय शैली उपयोगी लगेगी। जिनके पास आर का कुछ अनुभव है, वे डेटा संरचना, रूपांतरण और रिपोर्टिंग को अधिक अनुशासित बनाने के तरीके पा सकते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह पाठक को केवल परिणाम निकालना नहीं, बल्कि ऐसा विश्लेषण बनाना सिखाती है जिसे बाद में समझा, बदला और दोहराया जा सके। इसका बौद्धिक लाभ यह है कि डेटा को निष्क्रिय संख्याओं के संग्रह के बजाय प्रश्नों, मापों और प्रमाणों की संरचना के रूप में देखना सिखाया जाता है। समान आर पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता टाइडी डेटा सिद्धांत और टाइडीवर्स उपकरणों के बीच मजबूत संबंध में है। यह भाषा के हर तकनीकी विवरण या उन्नत सांख्यिकीय प्रमाण पर केंद्रित नहीं है। इसलिए जो पाठक गहरे सांख्यिकीय अनुमान, मशीन लर्निंग सिद्धांत या आर की आंतरिक प्रोग्रामिंग चाहते हैं, उन्हें पूरक स्रोतों की आवश्यकता होगी। फिर भी डेटा आयात से स्पष्ट संप्रेषण तक एक सुसंगत रास्ता देने के कारण यह डेटा विश्लेषण की बुनियादी कार्य पद्धति सीखने के लिए उल्लेखनीय मार्गदर्शक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं हैडले विकम, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।